نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طهارت اور اس کے مسائل، قسط نمبر دو. عنوان ہے نجاستوں کی پاکی کا بیان، نجاستوں کی تطہیر کا بیان. نجاست کسے کہتے ہیں؟ نجاست کا لفظ ناپاکی اور گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا جو باطنی ناپاکی ہے، جیسے کفر، شرک، یہ بھی ایک پلیدی ہے، ناپاکی ہے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناپاک ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، اور اس کے معنی ہے کہ جیسے اس کو گندگی لگ گئی ہے، پیشاب، پخانہ، مزی، ودی، منی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں. تو نجاست کہتے ہیں ناپاکی کی حالت کو. ناپاکی کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یا یہ کہ ہوا کا خارج ہونا، ریح کا، جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہنا، منہ بھر کر قے کرنا، استحاضے کا خون آنا، ٹیک لگا کر سونا، تو یہ ہے چھوٹی نجس، چھوٹی ناپاکی. اس کو حدث اصغر بھی کہتے ہیں. اور دوسرا ہے ناپاکی کی وہ حالت جو کہ حدث اکبر کہلاتی ہے. اس میں مرد کا عورت کے ساتھ مباشرت کرنا، یا پھر شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، حیض اور نفاس کا خون آنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ حدث اکبر یا بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نجاست ہے ان کی تطہیر کے بارے میں، ان کی پاکی کے بارے میں. اور یہاں پر جو ہے جیسے جو لفظ ہے استعمال ہوتا تطہیر کا، تو پاکی کا طہر بھی جیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ پاکی کے لیے قرآن میں پانچ لفظ آئے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ چوتھا درجہ ہے طہورا. اس کے معنی ہوتے ہیں طہورا کے کہ میل کچیل کو دور کرنا، گندگی کو پاک صاف کرنا، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا. اور طہارا طہورا میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاستوں سے پاکیزگی اختیار کرنا، کہ دل بھی جو ہے وہ شرک اور کفر سے، حسد سے، بری جو باتیں ہیں ان سے پاک ہو، اور ظاہری طور پر بھی جو ہے وہ پاکی اختیار کی جائے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 4. اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے حیض کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222. حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان کے قریب نہ جانا. اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں یہ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک بدو مسجد نبوی میں آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کیا. صحابہ بھاگے دوڑے کہ اس کو ماریں، اس کے پیچھے پڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ वहरीकू अला बौलेही सजलम मिम्मा, इसे छोड़ दो, इसे अपनी हाजत पूरी करने दो। फिर आपने कहा कि जगह को पाक करने के लिए इसके पेशाब पर पानी का डोल बहा दो। अब वो पेशाब करना शुरू कर चुका था, बद्दू था, अराबी था, तालीम याफ्ता तहजीब याफ्ता तो था नहीं। अब हालांकि वो मस्जिद में कर रहा है और मस्जिद नबी भी उस वक्त ऐसी थी, पत्थरों की बनी हुई, घास फूस पत्थर, आज वाली जो है, आज की जो मस्जिद है वो नहीं थी। तो इसलिए उसको पता भी नहीं था इस बात का कि क्या करना है, तहजीब भी नहीं थी। तो आपने एक तरफ सहाबा को ये हुक्म दिया कि इसको अभी छोड़ दो, जब वो अपनी हाजत पूरी कर चुका। अब आपने सहाबा को बुलाया और कहा कि इस जगह पर जो है वो पानी बहाकर इसको पाक कर दो। तो इससे क्या बात पता चलती है कि उससे जो है पेशाब नापाक है, और पानी के बहाने से, पानी के इस्तेमाल से पेशाब से पाकी हासिल हो जाती है। दूसरी बात जो पता चलती है कि आपने उस बद्दू को भी बुलाया और उसे कहा मस्जिद में पेशाब और गंदगी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र, नमाज और कुरान पढ़ने के लिए ये मस्जिद होती है। इस हदीस को इब्ने माजा ने जो है वो रवायत किया है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि ये जो पेशाब है या जो है वो पखाना है, तो इससे तहारत का इंतजाम करना चाहिए, इससे पाक साफ रहना चाहिए, क्योंकि बाज लोग जो हैं वो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करते। और इसी तरह जैसे बच्चों को भी शुरू से ही पेशाब के छींटों से और पेशाब से बचने की जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, लड़के खड़े होकर पेशाब ना करें, जब वो पेशाब करने के लिए जाएं तो उस वक्त उनको ये बात बताएं कि इससे जो है वो पानी से तहारत करनी है, पानी का इस्तेमाल करना है। और अगर फर्ज किया यहाँ पे कहीं ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि पानी मुयस्सर ही नहीं है, तो फिर टिश्यू वगैरह जो है, या टिश्यू नेपकिन जो कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, उससे जो है वो बाकी इख्तियार की जाए। और जब फिर उसके बाद जो है वो पानी मिले तो फिर पानी से अपने आप को जो है वो पाक किया जाए। बाज लोग पेशाब करके बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, फिर जब वो पाकी इख्तियार नहीं करते, जैसे टिश्यू वगैरह या नेपकिन या जो चीज थी उससे उन्होंने अपने आप को साफ नहीं किया, तो पानी के छींटे जो है टांगों को लग जाते हैं, शलवार को, पैंट को, पतलून को, और उससे जो है वो पूरा जिस्म जो है वो नापाक हो जाता है। और इस सिलसिले में जो है हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, और वो हदीस जो है वो बहुत ही डराने वाली हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स के बारे में कि इस पर जो है वो अजाब हो रहा है, और उस पर जो अजाब हो रहा था उसकी वजह क्या थी, तो वो पेशाब के छींटों से परहेज नहीं करता था। तो इसलिए जो है वो आपने बताया कि पेशाब के छींटों से परहेज न करने की वजह से इस पर जो है वो कब्र में अजाब हो रहा है। आप ये हदीस भी सुन लीजिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और बायसे अजाब कोई बड़ी चीज नहीं, इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। तो पेशाब से भी बचना, और इसी तरह फिर पखाना जो है उससे भी जो है वो पानी के जरिए अपने आप को जो है वो पाक करना, जब वो हाजत जो है वो पूरी हो जाए। तो दूसरी बात जो है वो मेंसेस वाला कपड़ा, हैज आलूद कपड़ा। हजरत अस्मा बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिस कपड़े को मेंसिस का, हैज का खून लग जाए तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे चुटकियों से मलकर पानी से धो डालना चाहिए और फिर इसमें नमाज अदा करनी चाहिए। इसे बुखारी ने रवायत किया है। इस हदीस से क्या बात पता चलती है कि जिस कपड़े पर भी जो है वो हैज का, मेंसिस का खून लग जाए तो उसको जो है वो पानी से धोकर पाक करना चाहिए। पानी जो है वो हैज का खून जो है ये नापाक है, और पानी जो है वो उसको पाक कर देता है जब पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कपड़ा जो है वो पाक हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ना फरमाती हैं कि जब हम में से किसी के कपड़े हैज के खून से आलूदा हो जाते तो गुसल के बाद हम खून वाले कपड़े जो थे उनको खुरच डालती, फिर वो जगह पानी से धो डालती और सारे कपड़े पर पानी छिड़क कर फिर इसमें हम नमाज पढ़ते। यानी अगर वो खून चिपका हुआ है तो उसको उतारना, फिर पानी से उसको पाक साफ करना, तो इसे बुखारी ने रवायत किया है। तो क्या बात पता चली कि हैज जो है इसका खून जो है थोड़ा हो या ज्यादा ये भी नापाक है। फिर तीसरी चीज है मनी का धोना। मनी का धोना, मनी किसे कहते हैं? मीम नून या इसके लफ्जी मानी है अंदाजा करना। मनी युंद, नुतफा, मनी। इसे मनी इसलिए कहते हैं कि इससे हैवानात की साख्त होती है। ये मादा खून से बनता है और अफजाइश नस्ल का सबब बनता है। मर्द जो है ताल्लुक कायम करके मनी को मादा के रहम में दाखिल करता है। तो मनी क्या है कि वो मखसूस प्राइवेट पार्ट से लज्जत और जोश के साथ टपक कर खारिज होने वाला वो सफेद मादा जिससे इंसान पैदा होता है, और इसके खुरूज से आदमी पर गुसल फर्ज हो जाता है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धो डालती थी और आप इस कपड़े में नमाज पढ़ने तशरीफ ले जाते थे और धोने का निशान कपड़े पर होता था। इसे बुखारी ने रवायत किया है। आप देखें कि बाज औकात जब आप उसको पानी से धो भी देते हैं ना तो निशान नहीं जाता। जैसे हैज को भी धो देते हैं तो शलवार है या अंडरवियर है उससे निशान नहीं जाता, लेकिन आपने उसको मलकर धोने की पूरी कोशिश की है तो फिर जो है वो निशान हो अगर है तो परेशानी की बात नहीं है कि उसमें जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है। फिर इसके बाद चौथी बात है शीरखार बच्चे का पेशाब। जैसे बहुत सी माएं जो हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, और वो कहती हैं कि असल में मसला ये है कि बच्चे ने जो है ना कपड़ों पर पेशाब कर दिया है, अब मेरे कपड़े पाक नहीं हैं इसलिए मैं जो हूं ना वो नमाज नहीं पढ़ सकती। इस सिलसिले में जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आप सुन लीजिए। हजरत उम्मे कैस रजी अल्लाह अनहा अपने छोटे शीरखार बच्चे को जो खाना नहीं खाता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई और आपने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर कपड़े पर छींटे मारे और उसे धोया नहीं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अब इस सिलसिले में आप एक और रवायत भी सुन लीजिए कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हों से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शीर खार शीर किसे कहते हैं? दूध को। शाबाश। शीर किसे कहते हैं? दूध को कहते हैं, और शीर खार दूध पीने वाला बच्चा। तो शीर खार बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और शीर खार बच्ची के पेशाब को धोया जाए। बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और बच्ची के पेशाब को धोया जाए। हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं ये हुक्म उस वक्त तक है जब तक के गल्ला ना खाएं, जब तक के वो खाना ना खाएं, जब खाना खाने लगे तो दोनों के पेशाब धोए जाएंगे। इसे मुसनद अहमद और तिरमिजी ने रवायत किया है। और ये जो मैंने अभी आपको हजरत उम्मे कैस रजी अल्लाह अन्हा वाली हदीस सुनाई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मतलब उस बच्चे ने आपके कपड़ों पर जो पेशाब कर दिया और आपने उस पर पानी के छींटे दिए धोया नहीं, तो ये जो है ये जैसे इसे बुखारी ने रवायत किया और इमाम मुस्लिम ने भी, और ये जो बच्चा था ये बेटा था, लड़की नहीं थी। इसी तरह हजरत लुबाबा बिन थारिस रवायत करती हैं हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अनहो, और यहाँ पे अनहुमा कहना चाहिए, एक हजरत हुसैन के लिए और दूसरा हजरत अली के लिए, हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अनहुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राजी हो। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हों ने रसूल अल्लाह की गोद में पेशाब कर दिया, जो अभी छोटे से थे दूध पीने वाले। मैंने अर्ज किया कि कोई और कपड़ा पहन ले और तहमत मुझे दे दें ताकि उसे धो दूं। आपने फरमाया लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। अब इस बात पर आपने नाराज नहीं होना कि लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएं और लड़की का पेशाब जो है ये धोया जाए, ये तो बात सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर। यहाँ के बच्चे ये बहुत कहते हैं ना कि फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है। तो कुरान और हदीस की बातें हमारे लिए किस लिए हैं कि हम उस पर अमल करें। और सूरत हशर की इस आयत से भी पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में कुरान हमें यह हुक्म देता है कि रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। क्या, क्यों और कैसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इसके बाद पांचवी बात है कि अगर जूता जो है उसको गंदगी लगी हुई हो, नजासत लगी हुई हो, फिर क्या करें। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ने रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई मस्जिद आए तो वो देख ले अगर जूतों में गंदगी लगी हो तो जमीन पर रगड़ने के बाद इनमें नमाज पढ़े। आपको पता है ना कि जैसे मतलब मस्जिद नबी अगर पत्थर कंकर वगैरह हैं और उस तरह से फर्श नहीं है, या आप कहीं भी बाहर हैं सहरा में हैं या कहीं बाहर किसी मैदान में हैं रास्ते में हैं, तो जूते के साथ भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि जैसे कारपेट बिछे हुए हैं बड़ा साफ सुथरा फर्श है तो अब जरूर जूते लेकर आए इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा। तो समझे बात को। तो असल में आपने एक मौके पर कहा था कि यहूदी जो है वो जूतों के साथ नमाज नहीं पढ़ते, तुम उनकी मुखालफत करो। तो मुसलमान जूतों के साथ पढ़ सकते हैं कब, जब जैसे कहीं ऐसी जगह पर हैं सफर में मैदान में रास्ते में और कहीं जूते भी हम साथ लेके जहां पे जा सकते हैं तो अगर पहन कर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बशर्ते के जूते साफ हो। अगर जो है वो उनको कोई गंदगी लगी हुई है तो गंदगी हटानी जरूरी है। तो ये है पांचवी बात के जूतों से भी जो नजासत है उसको साफ जो है वो किया जाए। फिर इसके बाद छठी बात है मुर्दार का चमड़ा, क्योंकि हजरत बरीरा रजी अल्लाह अन्हा की बकरी मर गई, हजरत बरीरा रजी अल्लाह अन्हा इनकी बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास से गुजरे और पूछा कि तुमने इसका चमड़ा उतार कर रंग क्यों नहीं लिया ताकि इससे फायदा उठाते। लोगों ने कहा वो तो मुर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका सिर्फ खाना हराम है। इस हदीस को बुखारी ने रवायत किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया हमारी बकरी मर गई, हमने इसके चमड़े को रंग कर मश्क बना ली। मश्क को क्या करते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं। फिर हमने इसमें खजूर का मशरूब डाला, इसको कहते हैं नबीज। तो हम उसमें खजूर का मशरूब डालते रहे यहां तक कि वो पुरानी हो गई। इसे भी बुखारी ने रवायत किया है। इससे क्या बात पता चलती है कि ऐसा जानवर जो कि हलाल हो लेकिन वो मुर्दा हो जाए, जैसे हलाल किए बगैर ही वो मर गया है, तो अब उसकी खाल जो है वो क्या है कि वो उसकी खाल जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जब उसको चमड़ा उतार कर उसकी खाल उतार कर जब उसको रंगा जाता है तो वो एक प्रोसीजर में से गुजरती है, तो जो उसके अंदर नजासत होती है ना वो साफ हो जाती है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा बकरी का चमड़ा उतार कर इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, फिर फरमाया कि मुर्दार का चमड़ा दबागत, इसके मानी होते हैं मसाले के साथ रंगने से पाक हो जाता है। जैसे वो एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद जो भी उसकी अंदर जो है वो नापाकी है वो खत्म हो जाती है। इसे भी अबू दाऊद ने रवायत किया है। जैसे बाज लोग कहते हैं कि जैसे जो है ये जैसे बकरी है, गाय है, या दुम्बा है, या जो जानवर हलाल हैं, तो अगर उनका जो चमड़ा है उसकी जैकेट इस्तेमाल कर ली जाए या उनका हम कुछ इस्तेमाल कर लें तो क्या वो जायज है? तो इन अहदीस की रोशनी से क्या पता चलता है कि हलाल मुर्दा जानवर की जो खाल है या चमड़ा है तो वो रंगने से या एक प्रोसीजर से गुजरने से वो पाक हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना किया, दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना किया। इस हदीस को किसने रवायत किया? अबू दाऊद ने रवायत किया। तो दरिंदों की जो खाल है उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर इसी तरह सातवीं चीज है, जैसे बिल्ली का जूठा, बिल्ली की जूठ, तो बाद लोग इस सिलसिले में भी सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हमने जो है वो घर में बिल्ली रखी हुई है, जैसे पेट के तौर पर बाद घरों में जो है वो बिल्ली होती है, तो अब उसका जो है वो क्या किया जाए? अगर वो बिल्ली जो है वो आकर जो है वो किसी खाने वाली चीज में या किसी पानी में या किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो फिर क्या करना चाहिए? इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जो है ये रहनुमाई करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्ली का जूठा पाक है। इस हदीस को अबू दाऊद तिर्मिजी ने रवायत किया है। क्या आपने क्या फरमाया कि जो जैसे अब ये पालतू जानवर है और घर के अंदर है तो हर जगह जो है वो मुंह डाल देता है, तो इसका जो जूठा है ये पाक है। आपको याद है एक सहाबी जिनका नाम ही अबू हुरैरा था रजी अल्लाह नो, शाबाश हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो। और अबू हुरैरा जो है इसके मानी क्या है? बिल्लियों का बाप। तो उनके पास जो थी वो बहुत सी बिल्लियां थी, तो इसलिए जो है उनको अबू हुरैरा कहा जाता था। फिर आप देखें कि आठवीं चीज है सोने चांदी के बर्तन में खाना। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सोने चांदी के बर्तनों में खाता पीता है वो अपने पेट में दोजख की आग जमा करता है। इस हदीस को सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो सोने के बर्तन इस्तेमाल किए जाएं या के चांदी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएं तो ये भी जो है ये जायज नहीं है। पर ये हदीस बहुत ही डराने वाली है। फिर इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं मसलन, अब हम ये देख लेते हैं कि और नापाकी की क्या हालतें हैं। और इस हिस्से में जैसे आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा कि गुस्ले जनाबत, जनाबत, जनाबत का जो लफ्ज़ है जीम नून बा, ये इसका मादा है और इसके असल में मानी है दूरी और बेगानगी के। इसी से अजनबी लफ्ज़ निकला है। अजनबी कौन होता है? जो अपने शहर और घर से दूर होता है। इसी तरह जनाबत वो नजासत है, वो गंदगी है जो कजाए शहवत से या ख्वाब में मादा खारिज होने से लाहक होती है, और आदमी जो है वो तहारत से दूर हो जाता है, तहारत से बेगाना हो जाता है, और उसके लिए फिर गुस्ले जनाबत करना जरूरी होता है। ये चार हालतें हैं जिसमें गुस्ले जनाबत जरूरी है। नापाकी से पाक होने का गुसल जरूरी है। नंबर एक, जोश के साथ मनी का खारिज होना, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद। और इसमें एहतलाम भी शामिल है। और एहतलाम किसे कहते हैं? कि ख्वाब में मादा, वो जो मादा है, खारिज होने से जो है तब भी जो है वो गुसल जरूरी हो जाता है। और एहतलाम के सिलसिले में ये याद रखें कि मर्द को एहतलाम होता है तो क्या औरत को भी होता है? औरत को भी होता है। उम्मिल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह ना रवायत करती हैं, हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता, मैं भी आपसे मसला पूछती हूँ, क्या औरत पर गुसल है जबकि उसको एहतलाम हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब पानी मनी का निशान देखे। इस पर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ होता है, तेरा दायां हाथ खाक आलूद हो। तो ये जो खाक आलूद होना जो है, इसके मानी क्या होते हैं? ये बद्दुआ नहीं है बल्कि अरबों के यहाँ एक मुहावरा था और ये इस्तेमाल किया जाता था कि तेरा दायां हाथ खाक आलूद हो, जैसे तुझे ये बात भी पता नहीं है, आप यूं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एहतलाम जो है दरअसल ये मनी का पानी होता है। और ये भी जरूरी है कि आप समझ लें कि मनी किसे कहते हैं, और अभी अभी मैं बता चुकी हूं कि मनी जो है इसके मानी क्या है, कि वो पानी, वो मादा जो खून से बनता है और उससे इंसान की तख्लीक होती है। और कभी तो ये होता है कि मर्द जब औरत से ताल्लुक कायम करता है तो उस वक्त ये मादा जो है वो औरत के रहम में दाखिल करता है, खारिज होता है तो वो दाखिल करता है। और कभी जो होता है ये उसके बगैर भी जो है वो ख्वाब में भी या वैसे ये मादा जो है वो निकलता है। तो पहली चीज ये है कि जोश के साथ मनी खारिज होना, इसमें एहतलाम भी शामिल है। नंबर दो, सोहबत के बाद। और सोहबत के माने क्या है? कि मियां बीवी का जब ताल्लुक कायम होता है। नंबर तीन है हैज के बाद। और नंबर चार है निफास के बाद। और निफास वो खून होता है जो बच्चे की पैदाइश के बाद जो है औरत की मखसूस जगह से निकलता है। और ये जो निफास का खून है इसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 40 दिन है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत को निफास के बाद बिल्कुल खून ना आए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो जितने दिन आए उतने दिन के बाद उसको नहाकर फिर जो है वो नमाज, रोजा और जो भी उसके फराइज हैं अदा करने चाहिए। और मैक्सिमम मुद्दत 40 दिन है। और बाज लोग जो हैं वो ना भी आए तो 40 दिन तक बैठे रहते हैं और नमाज, रोजा और जो फराइज हैं उसको अदा नहीं करते, ये बात सही नहीं है। अच्छा, आप देखें कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान गुस्ले जनाबत का एक मसला आया। सहाबा के दो ग्रोह बन गए। गुस्ले जनाबत क्या बात है फिर? ऐसा गुसल जो कि नापाकी की हालत में करना जरूरी होता है। और मैंने आपको बताया कि चार हालतें हैं जिसमें गुस्ले जनाबत जरूरी है। अभी चार हालतों का जिक्र किया आपने, मैंने पढ़ किया और आपने भी इसको समझा। अब सहाबा के दरमियान गुस्ले जनाबत के बारे में जो है वो एक मसला आया और आपस में बहस होने लगी। दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह कहता था कि गुसल सिर्फ दखूल पर फर्ज हो जाता है, कि मर्द का प्राइवेट पार्ट जो है जब औरत की मखसूस जगह में दाखिल हो जाता है तो उस वक्त गुसल करना जरूरी है, खा जो है वो डिस्चार्ज ना हो, इंजाल ना हो। दूसरा ग्रोह कहता था कि वजूब, यानी गुसल के वाजिब होने के लिए दखूल के साथ डिस्चार्ज होना, इंजाल भी शर्त है। अब ये तवील उनकी आपस में डिस्कशन हुई। अब आप देखें कि वो इस तरह के मसाइल भी आपस में सीखते थे, सिखाते थे, ताकि कोई गलत काम ना हो, ताकि कोई अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो। जब उनकी आपस में तवील बहस हुई, आखिर करार पाया कि उम्मिल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से सवाल पूछा जाए। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द औरत की चार शाखों के दरमियान बैठ जाए और इसका वो मखसूस जो पार्ट है महले खतना, औरत के महले खतना मतलब वो जगह जिसको खतना किया जाता है, वो जगह औरत की उस खास जगह में जाकर मस करे, उसके अंदर दाखिल हो जाए प्राइवेट पार्ट में, तो गुसल वाजिब हो जाता है। तो क्या बात फिर निचोड़ के तौर पर सामने आई कि सिर्फ दखूल से ही मर्द अपने प्राइवेट पार्ट को जब औरत के प्राइवेट पार्ट में दाखिल करता है तो उन पर गुसल वाजिब हो जाता है, डिस्चार्ज शर्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, ये बुखारी की रवायत है, कि जब तुम औरत की चार शाखों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुसल वाजिब हो गया अगर ये मनी ना निकले। और फिर दूसरी बात, ये तो पता चल गया कि गुस्ले जनाबत जो है कब करना है। अब दूसरी बात कि उम्मिल मोमिनीन हजरत सलमा रजी अल्लाह ना बयान करती हैं कि औरत भी जो है वो मोहतलिम होती है, यानी उसको भी एहतलाम होता है, और हदीस मैंने अभी आपको सुनाई। और इसके मानी क्या है कि औरत को भी एहतलाम होता है, कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी देखे, जैसे मनी का निशान देखे, तो ये एहतलाम की अलामत है, इन पर गुसल करना फर्ज हो जाता है। और अगर उनको एहतलाम की कैफियत याद नहीं, कोई निशान नहीं नजर आ रहा, कोई तरी वगैरह नहीं है, लेकिन फीलिंग है, तो गुसल फर्ज नहीं, फिर ऐसी सूरत में शक करने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद इस सिलसिले में, गुस्ले जनाबत के सिलसिले में तीसरी यहां बात, के जो जुम्बी है नापाक है उसके बालों का क्या मसला है। अक्सर औरतें ये सवाल पूछती हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ने रवायत करती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ। मानी क्या है? छोटी छोटी बारीक बारीक चुटिया या बड़ी चुटिया, खूब अच्छी तरह मजबूती से चुटिया बनाना। क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि तीन लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तू पाक हो जाएगी। तो इसे जो है सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जब वो पानी जो है औरत अपने सर पर डालेगी तो बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए, ताकि जो है बिल्कुल जो है वो जड़ों तक जाए। और जो शर्त है पाकी की कि पानी पाक करता है, तो फिर वो जो है वो औरत पाक हो जाए। तो अगर जो है वो पानी बिल्कुल जो है वो बाल ऐसे गुंदे हुए हैं कि खोले बगैर पानी नहीं जा सकता, तो फिर जो है ये सही नहीं है, फिर खोलना पड़ेगा। और अगर जो है वो खोले बगैर पानी जा सकता है, तो फिर जो है वो पानी डालकर और अपने बालों को खोले बगैर जो है वो औरत जो है वो गुसल कर सकती है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात है जो कि याद रखने वाली है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हो औरतों को गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। आप रजी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, इब्ने अमर पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुसल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर तीन चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। اسے بھی جو ہے وہ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، الحیض جو باب ہے اس کے اندر. اگلی اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی جنبی ہے، مرد ہو یا عورت، تو کیا اسے میل جول ہاتھ ملانا جائز ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جنابت کی حالت میں میں نے رسول اللہ سے ملاقات کی. جنابت کے معنی کیا ہے؟ نپاکی، جنبی. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا. آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا. آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، بس خاموشی سے وہاں سے نکل گئے. کہتے ہیں میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا. اب جنابت ہے، یعنی اگر اس کو ایسی حالت ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے، اس پہ غسل کرنا اب واجب ہے، تو اگر اس نے بھی غسل نہیں کیا تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، کھانا پینا، یہ جو ہے یہ سب جائز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے. حدیث کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنوبا فاراد ان یاکل او ینام توضع وضوءه للصلاه. تو اس سے اصول کے طور پر کیا بات سامنے آئی؟ کہ حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کر لیا جائے تو افضل ہے. بہنوں میں سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا نا یہ، کہ جیسے حالت جنابت میں ہیں، ابھی غسل نہیں کیا، کسی کو ایک دم ناشتہ دینا پڑ رہا ہے یا بچے کو دودھ دینا پڑ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اچھی طرح ہاتھ دھو لیے جائیں اور وضو کر لیا جائے تو یہ بات جو ہے وہ افضل ہے. اب اس موقع پر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو دعا مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دعا سکھائی، بڑی خوبصورت دعا ہے. جب شادی کی تیاری ہوتی ہے تو یہ ساری سنتیں جو ہیں نا، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور یہ بچوں کو سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے. اور یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا کرے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور دعا کسے پڑھنی ہے؟ یہ مرد کو پڑھنی چاہیے. اور اگر مرد کو نہ آتی ہو، عورت بھی یاد کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو یاد دلا سکتی ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حالت جنابت میں ہے، اب وہ سونا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی وقت غسل کرے या फिर ये कि वो सो सकता है। इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस हमारी रहनुमाई करती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह से मसला पूछा कि क्या जुम्बी गुसल किए बगैर सो सकता है? हल यनामु अहदुना वहुवा जुनुब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ वुजू कर ले, यतवद्दउ सुम्मा लियनुम हत्ता यग्तसिल इज़ा शा, वुजू कर ले और सो जाए, फिर जब चाहे उठकर गुसल कर ले। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। तो वुजू करके सोया जा सकता है, और अगर कोई वुजू नहीं करता तो इसकी भी रुख्सत है, और अगर कोई नहा लेता है तो ये अफजल है, क्योंकि जो है वो ये भी हो सकता है कि ऐसे ही मौत आ जाए तो नापाकी की हालत में। फिर दूसरी आम बात ये है कि जो है वो बाज़ुकात नहाया नहीं होते, नहाए भी नहीं होते, ऐसे ही सो गए, अब आंख ऐसी हालत में खुली कि नमाज बिल्कुल आखिरी वक्त में है, और इसमें जो है अब नमाज जो है वो कजा होने का खतरा है। तो कभी भी फराइज के लिहाज से रिस्क पे नहीं रहना चाहिए। तो अब आप देख ले, असल बात जो समझने की है वो ये कि एक चीज है रुख्सत और इजाजत, और एक चीज क्या है कि बेहतर अफजल। तो दोनों में जो है वो फर्क समझ में आना चाहिए। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से भी रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालत जनाबत में सोने का इरादा फरमाते तो अपनी शर्मगाह धोकर नमाज की तरह वुजू कर लेते। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और आप ये भी याद रखें कि आप तहज्जुद की नमाज बाकायदगी से पढ़ा करते थे, कितना सोते होंगे रात के आखिरी पहर में, फिर उठ जाते थे तो थोड़ी देर में उठकर फिर गुसल कर लिया। तो इस तरह का सोना नहीं जैसे आज लोग सोते हैं कि तहज्जुद तो दूर की बात है, फर्ज फजर की नमाज भी जो है वो रिस्क पर चली जाती है। एक और हदीस है जिसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई अपनी बीवी से सोहबत करे और फिर दोबारा करना चाहे तो उसे चाहिए कि दोनों के दरमियान वुजू करे। तो पहले जो गंदगी है, जाहिर है कि तहारत करेगा फिर वुजू करेगा तो उससे पाक हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हाइजा औरत है इसके बारे में क्या अहकाम हैं। हैज की हालत में औरत से इंटरकोर्स करना सख्त गुनाह है, ताल्लुक कायम नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया सूरत अल बकरा आयत 222, फातज़िलुन निसा फिल महीद, बस आयाम हैज मेंसेस में औरतों से अलग रहो, किनारा कशी इख्तियार करो। तो ये जरूरत है कि बच्चों को इसकी रहनुमाई की जाए, और बड़ों को भी ये बात पता होनी चाहिए। और अगर कोई जो है वो हालत हैज में ये ताल्लुक कायम कर लेता है तो ये गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई हैज की हालत में अपनी औरत से सोहबत करे तो उसे चाहिए कि निस्फ दिनार सदका करे। इस हदीस को अबू दाऊद ने रवायत किया है, और निस्फ दिनार होता है सवा दो माशे सोना। तो उसकी कीमत जो है वो सदका करे और आइंदा के लिए जो है वो तौबा करे। इसी तरह मजी मजी जो है ना, इस सिलसिले में क्या अहकाम हैं? मीम जाल या, ये उस चपकते हुए लेसदार पानी को कहते हैं जो शहवत के वक्त जो है वो मर्द के प्राइवेट पार्ट पर उसके सिरे पर नमूदार होता है, मजी। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो बहुत ताकतवर थे, कहते हैं मुझे मजी की शिकायत थी, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछना चाहता था लेकिन मुझे शर्म आती थी कि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी। चुनाचे मैंने हजरत मिकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह अन्हो से दरखास्त की। हजरत मिकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह इनके दोस्त थे, तो अपने दोस्त मिकदाद से कहा कि वो रसूल अल्लाह से मसला पूछे। जब उन्होंने जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि مضی کے خارج ہونے پر غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا چاہیے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اب اس حدیث سے بھی پھر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا کافی ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. اور ایک چیز ہوتی ہے ودی، وودالیا. ودی کے لفظی معنی ہوتے ہیں، اصل میں یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو، جیسے دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ زمین ہے اس کو بھی وادی کہتے ہیں، اور وہاں کیا ہوتا ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح مرد کی وہ نمی رطوبت ودی ہے جو عورت سے لذت اندوزی کے وقت یا بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے. وہ دالیا، وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں ہے. تو ودی، وہ سفید پانی جو عورت سے تعلق قائم کیے بغیر ہی، ویسے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے تو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد. بعض عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہمیں لکوریا کی شکایت ہے، سفید سا پانی سا رطوبت نکلتی رہتی ہے، تو اس سے غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ وضو کر کے ان کو حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ مینسز میں ہے تو مرد اس کے ساتھ جو ہے وہ کس کر سکتے ہیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیا، جیسے تہمد اس کے باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی. اسی طرح ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا، میں نے کہا میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اسے بھی صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. اور اس سلسلے میں جو بات اہم ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ حیض یا جنابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں جو ہے وہ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، جائے نماز پر بیٹھا جا سکتا ہے، ذکر کرنا، تسبیح، تحلیل وغیرہ. جیسے وہ میں نے حدیث آپ کو سنائی نا کہ حیض کی حالت میں انہوں نے جائے نماز پکڑانا تھا، تو یہ جو ہے آپ نے کہا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اسی طرح جیسے نماز، ذکر، نماز تو نہیں پڑھنی لیکن دعا کرنا، ذکر کرنا، جیسے وہ عید کی نماز کے لیے جب رسول اللہ نے کہا کہ لوگ عورتیں بھی عید کی نماز میں آئیں تو کچھ نے کہا کہ ہم حیض سے ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں لیکن نماز نہ پڑھیں، تو حیض والی عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی. اسی طرح حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر کیا دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس سلسلے میں یہ بخاری اور مسلم کی روایت یاد رکھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ جس چادر میں نماز پڑھتے، اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ رسول اللہ پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی. اسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، حیض سے جب پاک ہوں تو ایسے بھی نہیں ہو کہ حیض ختم نہیں ہوا اور آپ نے نہا لیا. رمضان کے مہینے میں عورتیں یہ سوال بہت پوچھتی ہیں، حالانکہ رمضان کے بغیر بھی جو ہے وہ نمازوں کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اجلت بھی نہیں کرنی تو تاخیر بھی نہیں کرنی. عام دنوں میں پھر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اچھا چلو پھر کل دیکھیں گے، پھر فجر بھی گئی، اچھا پھر اب ظہر، پھر عصر. تو اس حصے میں خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نماز فرض ہے، اور دھیان رکھتے رہیں، اور جو ہی پتا چلے کہ اب میرا حیض رک گیا ہے یا میرا خون آنا بند ہو گیا ہے تو فوراً نہا کر جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ ایک رکعت کا ٹائم ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ جیسے ایام حیض کے بعد عورت کیا کرے، غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو، जब औरत नमाज अदा कर चुके हैं तो फिर शौहर अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है क्योंकि नमाज अफजल है। अब ये नहीं कि वो पाक हुई है, अब एक तरफ नमाज है दूसरी तरफ ये ख्वाहिश है, तो पहले नमाज है फिर ये बात है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हायजा औरत जो है या नापाक औरत, उसको कुरान की तिलावत नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में बुखारी की रवायत है कि हजरत इब्राहिम नखी कहते हैं कि हायजा औरत कुरान मजीद की एक आयत पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं। तो इस सिलसिले में फिर फुकहा ये कहते हैं कि हायजा औरत को मसलसल कुरान पाक की तिलावत करना मना है, अलबत्ता एक एक आयत तोड़ कर पढ़ सकती है। और फिर जैसे इब्ने बाज जो सऊदीया के सबसे बड़े स्कॉलर है, उनका भी ये फतवा है कि अगर जो है कोई उस्ताद है मुअल्लिमा या कोई तालिब इल्म है, और वो मतलब दोनों वो औरतें हैं लड़कियां हैं, तो तालीम देने के लिए, क्योंकि उस्ताद पढ़ाने के लिए भी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा होता है और तालिब इल्म भी तालीम ले रहे होते हैं, तो वो जो है वो कुरान को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में वो कुरान के मतन को हाथ नहीं लगा सकते, ग्लव्स पहनकर जो है वो कर सकते हैं। इस सिलसिले में आप ये बुखारी की रवायत सुन लीजिए, हजरत अबू वायल रजी अल्लाह नो अपनी खादमा को हालत हैज में अबू रजीन रजी अल्लाह नो के पास कुरान मजीद लाने के लिए भेजते और वो कुरान मजीद का नेफा पकड़कर ला देती थी। तो जैसे उसका जो गिलाफ था या जो कपड़ा था उसके साथ पकड़कर ला देती थी। तो अगर औरतों के हाथ में कोई और कपड़ा है, रुमाल है या ग्लव्स हैं, और वो उससे जो है वो कुरान को पकड़ें लेकिन मतन पर हाथ ना लगाएं, तो वो लोग जो के जिन जिनका एक सबक है और अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनका वो रह जाएगा, जैसे किसी ने हिफ्ज किया हुआ है उनका हिफ्ज भूलने का खतरा है, या इसी तरह सबक का वक्त जो है वो गुजर जाएगा तो पीछे रह जाएगा, तो ऐसे में उल्मा इसकी रियायत देते हैं, गुंजाइश देते हैं। और इसी तरह हालते हैज में बीवी को तलाक नहीं दी जा सकती। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह उन्होंने हालते हैज में बीवी को तलाक दी थी, और जब रसूलुल्लाह से मसला पूछा गया तो आपने कहा कि अब्दुल्ला से कहो कि अपनी बीवी से रुजू करे और हैज से पाक होने तक उसे अपने पास रखे, फिर जब हैज आए और इससे पाक हो जाए तब चाहे तो सोबत करने से पहले तलाक दे, चाहे तो जो है उसे अपने पास रखे। हैज के बाद अब हम देख लेते हैं इस्तेहाजा। इस्तेहाजा किसे कहते हैं? ये वो खून होता है, हाँ, जो हैज के अलावा आता है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि फातिमा बिनते अबी हुबैश रसूल अल्लाह की खिदमत में आई और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्तेहाजा का खून आता है और मैं जो है क्या नमाज छोड़ दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इस्तेहाजा का खून एक अंदरूनी रग से बहता है और ये खून हैज नहीं है, बस जब तुझे हैज का खून आए तो नमाज छोड़ दे, और जिस वक्त हैज का खून बंद हो जाए और इस्तेहाजा का खून शुरू हो तो अपने इस्तेहाजा के खून को धो और नमाज पढ़। इसे सही बुखारी ने रवायत किया। ये सवाल भी औरतें बहुत पूछती हैं। तो इस सिलसिले में हर शख्स को अपनी आदत का पता होना चाहिए कि मेरे मेंसेस की के दिन 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, रूटीन क्या है, और रूटीन के मुताबिक वो नहाकर फिर वो नमाज शुरू कर दे। बाकी जो खून है वो हैजा का हैज का बाकी खून जो है इस्तेहाजा का खून है। और अगर किसी को इस्तेहाजा से पहले हैज के दिन पता नहीं है, अब वो क्या करेगी? यानी बेकायदगी है, बेकायदगी है, कभी जल्दी कभी देर से, कभी 5 दिन कभी 8 दिन कभी 9 दिन उसका खून आता है, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? तो इस सिलसिले में फुकहा कहते हैं कि उसे हैज और इस्तेहाजा के खून के रंग में फर्क देखकर हैज और इस्तेहाजा के अहकाम पर अमल करना चाहिए। जैसे जो हैज का खून होता है स्याह रंग का होता है, पहचाना जाता है, हैज भारी होता है। जैसे ये एक हदीस है हजरत फातिमा बिन अबी हुबैश वाली कि वो मरीज थी رسول اللہ نے انہیں فرمایا جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا چاہتا ہے، لہذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے، اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ جیسے کسی کی نکسین نہیں پھوٹ جاتی، اسی طرح استحاضہ کا خون بہتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی دل نہیں مانتا، تو دل مانے یا نہ مانے ہر نماز کے وقت اپنا پیر چینج کر لیں، وضو کر لیں اور پھر جو ہے وہ نماز پڑھیں، اور جو بھی روزہ رکھنا ہے جو فرائض ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حمنہ بن جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے کثرت سے مسلسل استحاضے کا خون آیا کرتا، میں رسول اللہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی، اس وقت میری بہن زینب بن جہش جو تھی وہ ان کے گھر میں تھے رسول اللہ، میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خون تو اس سے زیادہ ہے، آپ نے فرمایا روئی کے اوپر لنگوٹ کس لیا کرو، میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، آپ نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو، میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، بڑی کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دو باتوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، اس کے کچوکوں میں سے ایک کچوکا ہے، حربہ ہے، جبکہ ہے تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے، ان دونوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کرو، اور جب محسوس کرو کہ اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہوں تو 23 یا 24 دن نماز روزہ کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر مہینے اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو جیسے کسی کے بھی حیض کی ایک مدت ہے، جیسے بعض لوگوں کو پہلے حیض ایک صحیح طرح سے آتا تھا پھر اس کے بعد اس کو مسلسل استحاضہ کی بیماری ہو گئی، تو وہ اپنے حیض کے دنوں کا خیال کر کے سوچے کہ یہ میرے حیض کے دن اور باقی دنوں میں پھر وہ نہا دھو کے جو ہے وہ نماز روزہ کرے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ کے ساتھ آپ کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ عورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ استحاضہ کی بیماری میں تھی اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ام حبیبہ سے غسل کر لینے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، جیسے وہ تو استحاضہ دراصل یہ ایک بیماری ہے، حیض وہ مخصوص دن جو عورتوں کو آتا ہے اور ہر ایک کے حیض کے دن مختلف ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور بات جو یاد رکھنی چاہیے اور وہ ہے نفاس کا خون، نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نفاس والی عورتیں رسول اللہ کے زمانے میں 40 دن نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، اور اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اگر 40 دن کے بعد خون آئے تو پھر ان کو نہا کر نماز پڑھنی چاہیے، 40 دن کے بعد کا خون پھر استحاضہ کا خون ہے، ناپاکی کا خون نہیں ہے، ہر نماز کے لیے ان کو وضو کرنا چاہیے، اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، یہ جو مدت ہے نا 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفاس کی مدت 40 دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے فوراً ہی، جو ہی وہ فارغ ہوئی ہے خون نہیں آیا، دیکھا ہے اس نے ایک دن میں یا اس طرح، تو اس کو اپنا نہا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی بات یاد ہے کہ جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے کچھ ہی دن بعد 40 دن ہی ہوئے تھے میں نہائی اور نہا کر میں نے نماز پڑھنی شروع کی، تو میرے والد محترم جو اب فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے میری امی کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے اس کو نہیں بتایا کہ 40 دن تک جو ہے وہ نہیں نہاتے، اور مطلب 40 دن تک نماز نہیں پڑھتے نا، تو میری امی نے بھی مجھے کہا، تو میں نے کہا نہیں امی ایسے نہیں، ایسے ہے کیونکہ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ کچھ بات مشہور ہو گئی ہے کہ 40 دن تک عورتیں جو ہے نا انتظار کرتی ہیں، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں تعلیم بھی دینی چاہیے، اور جو ہی جو ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد خون آنا بند ہو جائے اور एक हफ्ते के बाद 10 दिन, 15, 20, 22 जो भी दिन है, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन, अगर उससे पहले खत्म हो जाए तो नहा धोकर नमाज शुरू कर देनी चाहिए। और अगर किसी का 40 दिन तक आता है तो ये मैक्सिमम है, अगर उसके बाद भी आता है फिर भी उसको 40 दिन के बाद नहाकर नमाज शुरू कर देनी चाहिए। और 40 दिन का टाइम कब पूरा होगा, जैसे बच्चा अगर मगरिब के वक्त जो है वो पैदा हुआ है तो मगरिब के वक्त ही उसके 40 का दिन पूरा हो जाएगा, और उस वक्त फिर उसको नहाकर नमाज पढ़नी शुरू कर देनी है, अगर उसका जो है उसके अभी भी खून जो है वो आ रहा है। तो असल चीज क्या है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, व तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और जिस तरह जरूरी है कि हम हज, नमाज, रोजा, जकात और बाकी चीजों के अहकाम सीखते हैं, इसी तरह हमें पाकी और तहारत के अहकाम सीखने चाहिए, अपने बच्चों को सिखाने चाहिए, बेटियों को भी और बेटों को भी, ताकि कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अच्छा मुसलमान बनाए, बामल बनाए, और पूरी जिंदगी जो है हम इस्लाम को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने वाले बन जाएं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك।